मित्रों, तो आइए कुछ बातें करें इतिहास की आज। और आज भाई चर्चा करते हैं लखनऊ के बहुत ही मशहूर नवाब वाजिद अली शाह के बारे में, जिनके बारे में कई भ्रांतियां हैं कि वो आलसी थे, रंगीन तबीयत के थे, बहुत अत्यधिक खर्च करते थे। लेकिन उन्होंने जो तहजीब को अपनी पहचान दी, पसंद दी, उसके बारे में तो बहुत लोग शायद नहीं जानते। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान शुक्ल के साथ। और अंशुमान जी हमें वाजिद अली शाह के बहुआयामी चरित्र के बारे में कुछ बताएंगे। तो नमस्कार अंशुमान जी।
जी नमस्कार कुमुद जी।
भाई आज ऐसा है कि आप इतिहास की इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं और लखनऊ के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, तो हमें नवाब वाजिद अली शाह के बारे में बताइए।
नवाब वाजिद अली शाह नवाबों की एक अलग मुख्तलिफ पहचान के तौर पर उभरे थे। हालांकि 1847 में जब वो गद्दी नशीं हुए, अवध की गद्दी पर जब वो काबिज हुए, उसके बाद से उन्होंने कला पर, साहित्य पर, संस्कृत पर, संगीत पर अद्भुत कार्य किया। नवाब वाजिद अली शाह का कथक के विकास पर अहम योगदान था। हालांकि 1956 में जब वो गिरफ्तार करके मटिया बुर्ज कलकत्ता ले जाए गए, तो उनकी इन सब खूबियों को अंग्रेजों ने सिरे से खारिज करके उनको एक अय्याश, एक सुस्त, एक आलसी नवाब के तौर पर, एक शाहखर्च नवाब के तौर पर उनकी छवि को जनता के सामने विकसित करने की कोशिश की। लेकिन वो जनता के मना मस्तिष्क पर अभी भी उस तरीके की पैठ नहीं बना पाई। दरअसल जानने की ये जरूरत है कि नवाब वाजिद अली शाह किस कुव्वत के, किस फन के माहिर थे। तो जी हाँ, मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि नवाब वाजिद अली शाह आज हिंदू और मुसलमानों को लेकर पूरे विश्व में तमाम तरीके की रेखाएं खींची जा रही हैं, तमाम तरीके की भारत में सहिष्णु और असहिष्णु पर बहस और मुबाहसे हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल तमाम तरीके के रंगों रोगन से खुद को रंगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह अकेले वो नवाब थे जिन्होंने राधा कृष्ण पर रास रचाया, राधा कृष्ण पर ठुमरियां गाई, अद्भुत कार्य किया इन्होंने संगीत पर। इनके गुरु थे बशीर खान, प्यारे खान और जफर खान, इनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा ली नवाब साहब ने। और सूफी संप्रदाय से प्रभावित थे नवाब वाजिद अली शाह। किस तबीयत का ये नवाब था, इसकी बानगी सिर्फ इस बात से ली जा सकती है कि जिस दिन इनका जन्मदिन होता था उस दिन ये जोगिया वस्त्र पहनकर जनता के सामने आया करते थे। आज इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई मुगल, कोई मुसलमान पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण पेश कर सके, सांप्रदायिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का। ऐसे ही अवध के नवाब लोगों के जेहन में अपनी पैठ नहीं बनाए थे। अवध के नवाब सिर्फ मुसलमानों के ही नवाब नहीं थे, अवध के जो नवाब थे वो आवाम के नवाब हुआ करते थे। और नवाब वाजिद अली शाह के कई कविताएं लिखी इन्होंने, जिसमें मशहूर गजल संग्रह इनका है हुस्न अख्तर। इन्होंने कुछ नए राग भी गढ़े जिसमें जोगिया राग प्रमुख है। अब आप सोचिए जोगिया राग, इसको और किसी लहीम सहीम लच्छेदार मुगल शब्द के, किसी उर्दू शब्द का नाम दिया जा सकता था, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने इसको जुगिया राग दिया। रहस्य जुगिया और जश्न नाटक होते थे नवाब वाजिद अली शाह के, जिसमें वो प्रमुख किरदार निभाया करते थे। नवाब वाजिद अली शाह के लिए एक चीज और कही जाती है कि ये इंदर सभा एक नाटक हुआ करता था, उर्दू का पहला अवध में लिखा हुआ नाटक था। सैयद आगा हसन इन्होंने इस नाटक को लिखा था, जिस पर नवाब वाजिद अली शाह गोमती में, उस समय गोमती इतनी मैली नहीं होती थी, कलकल बहता हुआ दूध की तरह से गोमती का पानी होता था, उसमें रात में बजरा, जो रूम के तरीके का एक नाव होती है, उसको लेके जाते थे। कई बजरों का एक मंच बनाया जाता था जिसमें अबलक सफेद चादर बिछाई जाती थी, चारों तरफ सफेद मसनंद होती थी, लालटेन जगमगाता था वो मंच, और उसके बीच में नवाब वाजिद अली शाह इंदर सभा पर मशहूर रास रचाते थे। रास इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इंद्र का दरबार वहां सस्ता था। अच्छा। इंद्र के दरबार की पूरी परिकल्पना वहां पर सजीव करने की कोशिश की जाती थी, इसीलिए उस नाटक का नाम ही इंद्र सभा था। और उसमें नवाब वाजिद अली शाह नाचते थे, और नाचते थे तो घंटों मदमस्त होके नाचते थे नवाब साहब। और उसमें एक एक, एक उद्धरण मिलता है कि एक बाबा, एक, एक साधु बाबा वहां पहुंचे, तो काफी दूर तक बैरिकेडिंग होती थी नदी में भी, इनके जो अपने सैनिक होते थे वो उस प्रवेश वर्जित होता था वहां पर अमूमन बाहरी लोगों का। तो काफी देर तक उस बाबा ने कहा कि हमको नवाब साहब से मिलना है, नवाब साहब से हमको इसलिए मिलना है कि हमारे पास ये पारस पत्थर है जो हम चाहते हैं नवाब साहब को देना। तो जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि नवाब को इन सारी चीजों का शौक नहीं है, वो कला साहित्य संस्कृत इन सबों से जुड़े हुए हैं, उनको इन सबों से कोई लेना देना नहीं पारस पत्थर से। फिर भी उसने बहुत याचना की, तो इन साधु बाबा को लेकर वो वहां पहुंचे और नवाब साहब उस पर नृत्य कर रहे थे। साधु बाबा ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि आपकी इस महफिल में मैं खलल मैंने डाली, लेकिन मेरे पास एक ऐसी बहुमूल्य चीज है जिसको मैं देने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। तो नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम हमको इससे महत्वपूर्ण, इंद्र सभा के नाटक से महत्वपूर्ण तुम्हारे पास क्या है? तो बोले कि ये पारस पत्थर है साहब, जिसको अगर लोहे पर आप छू दीजिए तो वो सोना हो जाता है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने जवाब दिया कि हमारी इस रियाया को और हमको इस तरीके की कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जिसको छूने से कोई चीज सोना बन जाए, क्योंकि हम जिस आवाज में कहते हैं वहां का कड़ कड़ सोना है। नवाब वाजिद अली शाह, हाँ नवाब वाजिद, आप एक नवाब की इस नवाबियत को भी देखिए कि वो अपनी रियाया को, अपनी उस टेरिटरी को उस किस नजरिए से देखता था। जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके मटिया बुर्ज ले जाया जाने लगा, तो नवाब पूरे रास्ते रोते गया, पूरे रास्ते रोते गया, और रोते हुए वो सिर्फ एक ही चीज गा रहा था कि बाबुल मेरा नैहर छूटा गया। अब आप सोचिए उस नवाब के बारे में, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस नवाब के बारे में सोचकर कि कितना अद्भुत व्यक्तित्व था, और इन अंग्रेजों ने उस नवाब की क्या तस्वीर पेश की भारतीय जनमानस के सामने, विश्व के सामने। ये अंग्रेज जो वास्तव में उस समय सिर्फ हिंदुस्तान में एक व्यापारी की निगाह से हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को देखते थे, उनके लिए हिंदुस्तान की कीमत सिर्फ पैसों और रुपयों और आभूषण और ज्वेलरी से हुआ करती थी, वो अंदर की कीमत जान ही नहीं पाए, उस नवाब को पहचान ही नहीं पाए जिसने हिंदुस्तान को इतना सब कुछ दिया। तो जब तक देश रहेगा, जब तक विश्व रहेगा, तब तक वो लगातार रहेगा, और तब तक नवाब वाजिद अली शाह जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे।
वाह वाह, क्या तस्वीर, खूबसूरत और एक हकीकत भरी तस्वीर आपने हमारे सामने चित्रित की है। इस जानकारी के लिए अंशुमान जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया कुमुद जी।